कतरा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक अहम किताब पर बात करने वाले हैं, चार्ल्स आर क्रॉस की हैवियर देन हेवन।
नमस्कार।
और इस किताब के जरिए हम कर्ट कोबेन की जिंदगी, उनकी कला, उनके संघर्षों को समझने की कोशिश करेंगे।
कर्ट कोबेन, निर्वाना बैंड के फ्रंटमैन, 90s के दशक की शुरुआत में ग्रंज मूवमेंट का चेहरा, एक पूरी पीढ़ी की आवाज, है ना?
बिल्कुल। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक रॉक स्टार के बनने और दुखद अंत की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है।
हाँ, जैसा आप किताब का नाम ही बताता है, स्वर्ग से भी भारी। इसमें बचपन के गहरे जख्म हैं, कमाल की रचनात्मकता है, फिर मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां, नशे की लत,
और इन सबके ऊपर वो अचानक मिली दुनिया भर की शोहरत। वो बोझ शायद सच में स्वर्ग से भी भारी था,
और इसीलिए उनकी कहानी आज भी इतनी जरूरी लगती है ना? ये कला, मेंटल हेल्थ, फेम, इन सब के बारे में सोचने पे मजबूर करती है।
सही कहा। और चार्ल्स क्रॉस ने इसे जिस तरह लिखा है, वो खुद सिएटल के म्यूजिक जर्नलिस्ट थे, उस सीन को उन्होंने बहुत करीब से देखा था। द रॉकेट मैगजीन के एडिटर भी रहे।
हाँ, और उनकी रिसर्च कमाल की है, मतलब 400 से ज्यादा इंटरव्यूज, और सबसे बड़ी बात, उन्हें कर्ट की पर्सनल डायरीज और लेटर्स देखने को मिले जो पहले कभी पब्लिश नहीं हुए थे।
बिल्कुल। इससे हमें कर्ट के मन की उथल पुथल की एक अलग ही झलक मिलती है। तो चले शुरू करें उनके सफर को समझना।
हाँ बिल्कुल। शुरुआत कहाँ से होती है? एबरडीन, वॉशिंगटन से।
हाँ, एबरडीन में उनका जन्म हुआ। बचपन के शुरुआती साल तो मतलब ठीक ठाक थे, खुश थे, आर्टिस्टिक झुकाव था उनमें शुरू से।
लेकिन फिर वो टर्निंग पॉइंट आया जब वो सिर्फ 9 साल के थे, उनके पेरेंट्स का तलाक।
हाँ, और क्रॉस इसे उनकी जिंदगी का ओरिजिनल वूंड कहते हैं, एक ऐसा घाव जिसने उन्हें बदल कर रख दिया स्थायी रूप से।
उस छोटे बच्चे के मन पर क्या गुजरी होगी, एकदम चुप हो जाना, गुस्सा भर जाना, और वो अकेलापन, जैसे किसी ने छोड़ दिया वो।
बिल्कुल। फिर उनका जीवन स्थिर नहीं रहा, रिश्तेदारों के यहाँ रहना पड़ा, यहाँ से वहाँ, वो एक घर, एक अपनेपन की तलाश में भटकते रहे, और इस सब ने उनके अंदर रिजेक्शन का, अपमान का एक गहरा डर पैदा कर दिया।
और इसी उथल पुथल में उन्हें सहारा मिला आर्ट और म्यूजिक में, एक तरह से कोप करने का तरीका था ये उनके लिए।
हाँ, और फिर टीनेज में उनकी जिंदगी में पंक रॉक आया। द मेलविन्स, सेक्स पिस्टल्स, ब्लैक फ्लैग, इन बैंड्स ने उन पर गहरा असर डाला। पंक मतलब वो तेज कच्चा साउंड, एंटी एस्टैब्लिशमेंट लिरिक्स।
और एबरडीन का माहौल भी वैसे ही था, आर्थिक मंदी, थोड़ी निराशा। कर्ट हमेशा खुद को वहां एक बाहरी, एक आउटसाइडर मानते थे।
तो पंक का वो गुस्सा, वो रवैया, उन्हें लगा कि ये मेरी आवाज है, इससे मैं अपनी पहचान बना सकता हूँ, अपना गुस्सा जाहिर कर सकता हूँ।
और फिर बैंड बनाने का जुनून चढ़ा, काफी महत्वाकांक्षी थे वो इस मामले में।
निर्वाणा की नींव पड़ी।
शुरुआती दिन तो जाहिर है मुश्किल रहे होंगे, गरीबी, संघर्ष, कभी कभी तो शायद रहने की जगह भी नहीं।
बिल्कुल। और इसी टाइम पर ड्रग्स ने भी उनकी लाइफ में एंट्री ली, कभी क्रिएटिविटी के लिए तो कभी अंदर के दर्द को भुलाने के लिए।
ये खतरनाक कॉम्बिनेशन था।
बहुत। फिर ड्रमर चैड चैनिंग के साथ वो सब पॉप रिकॉर्ड से जुड़े, सिएटल का वो इंडी लेबल जो ग्रंज साउंड का सेंटर था।
और पहला एल्बम आया ब्लीच, सिर्फ $600 में रिकॉर्ड हुआ है ना, एकदम रॉ हेवी साउंड।
हाँ बिल्कुल कच्चा। फिर शुरुआती टूर, छोटे क्लब्स, तंग वैन, बहुत मुश्किल।
और इसी दौरान वो पेट दर्द की समस्या शुरू हुई जो बहुत बढ़ गई थी।
हाँ, एक अजीब भयानक दर्द लगातार रहता था, असहनीय, और डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या है, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था।
और दर्द से राहत के लिए उन्होंने ओपिएट्स लेना शुरू किए।
वहीं से शुरुआत हुई। फिर बैंड में डेव ग्रोहल आए, जिनकी ड्रमिंग ने साउंड को एक नई जान दी।
और फिर बड़ा मौका मिला,
डीजीसी रिकॉर्ड्स के साथ डील। हाँ। और बुचविक के साथ रिकॉर्डिंग।
हाँ, और वो एल्बम था नेवर माइंड,
और उसका पहला सिंगल स्मेल्स लाइक टीन स्पिरिट। एक धमाका, रातों रात दुनिया हिल गई। निर्वाणा सबसे बड़ा बैंड और कर्ट कोबेन
ग्लोबल सुपरस्टार, अपनी पीढ़ी का प्रतीक। लेकिन कर्ट के लिए ये सब झेलना मुश्किल था।
हाँ, वो पंक वाला एथोस, वो आउटसाइडर वाली फीलिंग, और अब वो मेनस्ट्रीम के हीरो थे, उन्हें से नफरत होने लगी थी।
बिल्कुल। उन्हें लगता था कि मेरा गुस्सा, मेरा दर्द अब बिकाऊ माल बन गया है। वो पीढ़ी का प्रवक्ता वाला टैग उन्हें मजाक लगता था।
अंदर ही अंदर एक भयानक कश्मकश चल रही थी, प्रामाणिकता बनाम व्यावसायिकता। वो कहते थे कि हाई स्कूल के जिन बुलीज से मैं नफरत करता था, अब वही मेरे शो में सबसे आगे खड़े हैं।
ये विरोधाभास उन्हें खाए जा रहा था। ये स्वर्ग वाकई भारी था। नेवरमाइंड ने तो खैर ग्रंज को दुनिया भर में फैला दिया। और इसी दौर में उनकी मुलाकात कॉर्टनी लव से हुई।
हाँ, वो भी होल बैंड की फ्रंट वुमन थी, उतनी ही विद्रोही महत्वाकांक्षी।
उनका रिश्ता बहुत इंटेंस था, तूफानी।
कहते हैं उनमें काफी कुछ कॉमन था, बिखरा हुआ बचपन, एम्बिशन, ड्रग्स।
हाँ, मीडिया ने उन्हें पंक रॉक रॉयल कपल बना दिया। लेकिन साथ ही वो आपसी निर्भरता और हेरोइन की लत के जाल में और गहरे धंसते गए।
फिर उनकी बेटी हुई फ्रांसिस बीन, शायद उनकी जिंदगी का सबसे खुशी का पल, एक उम्मीद कि अब शायद वो स्टेबल फैमिली बना पाएंगे।
हाँ, उन्हें इसकी बहुत चाहत थी, लेकिन वो वैनिटी फेयर वाला आर्टिकल आ गया जिसमें कोर्टनी पर प्रेगनेंसी में हीरोइन लेने का इल्जाम था,
और उससे बड़ा बवाल मचा। पब्लिक स्क्रूटनी, बेटी की कस्टडी भी कुछ टाइम के लिए चली गई।
इस सब ने कर्ट को और तोड़ दिया, उनका अकेलापन और बढ़ गया।
और इसी माहौल में उनका तीसरा एल्बम आया, इन यूटेरो। हाँ, ये नेवरमाइंड के रिएक्शन जैसा था, जानबूझकर मुश्किल कर्कश साउंड। स्टीव एल्बिनी ने इंट्रोड्यूस किया था, एकदम रॉ।
गाने भी बीमारी, जन्म, मृत्यु, ऐसे भारी विषयों पे थे। एक कोशिश थी मेनस्ट्रीम से दूरी बनाने की, पंक क्रेडिबिलिटी वापस पाने की।
लेकिन अंदर से वो बिखर रहे थे, अकेलापन, गिरती सेहत और ड्रग्स पर पूरी तरह निर्भरता। वो हीरोइन को दवा की तरह ले रहे थे, पेट दर्द और इमोशनल पेन के लिए।
सिएटल के घर में लगभग कैद से हो गए थे।
हाँ, फिर 1994 की शुरुआत में वो आखिरी यूरोपियन टूर। तस्वीरों में ही दिखता है वो कितने दुखी, बीमार, अलग थलग थे।
और रोम में वो ओवरडोज, शैंपेन और रोहिप्नोल। क्रॉस का मानना है कि वो एक सुसाइड अटेम्प्ट था, नोट भी मिला था।
वो बच गए, लेकिन अलार्म बज चुका था। सिएटल लौटने पर दोस्तों परिवार ने इंटरवेंशन किया, रिहैब भेजा कैलिफोर्निया।
पर वो रुके नहीं वहां, 48 घंटे में ही भाग आए।
वापस सिएटल आए, शॉटगन खरीदी और फिर अप्रैल 1994 में अपने घर के ग्रीन हाउस में 27 साल की उम्र में
उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक नोट छोड़ा, नील यंग की वो लाइन कोट की थी, इट्स बेटर टू बर्न आउट देन टू फेड अवे।
दुनिया शॉक में थी, लाखों फैंस टूट गए, संगीत ने एक बहुत बड़ी आवाज खो दी। लेकिन उनकी लेगेसी, उनका म्यूजिक आज भी जिंदा है, वो एक कल्चरल आइकन है।
और उनकी कहानी ने मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, फेम के अंधेरे पहलुओं पर एक जरूरी बहस छेड़ी जो आज तक चल रही है।
इस पूरी कहानी में कर्ट के अपने कुछ कोर बिलीव्स भी दिखते हैं, है ना? जैसे वो प्रामाणिकता पर कितना जोर देते थे।
हाँ, उनका वो कोट है ना, मैं जो हूँ उसके लिए नफरत किया जाना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं जो नहीं हूं उसके लिए प्यार किया जाऊं। मतलब सच्चा रहना सबसे जरूरी था।
बिल्कुल, और यही चीज उनकी मेनस्ट्रीम सक्सेस के साथ टकराती थी। पंक वैल्यूज बनाम कमर्शियल सक्सेस, उन्हें सेलआउट कहलाने से नफरत थी।
धोखा देने का ख्याल भी उन्हें बर्दाश्त नहीं था।
हाँ, वो कहते थे सबसे बुरा अपराध लोगों को धोखा देना है।
और उनका वो यूथ पर एक बयान था, युवाओं का कर्तव्य भ्रष्टाचार को चुनौती देना है, वो विद्रोहीपन उनमें हमेशा रहा।
साइकोलॉजिकली देखें तो एक अजीब कॉन्फ्लिक्ट था उनमें, एक तरफ लोगों से जुड़ने की, एक्सेप्टेंस की चाहत,
और दूसरी तरफ
इंटिमेसी से डर, करीबी रिश्तों से घबराहट।
हाँ, शायद वो बचपन वाले अनुभव की वजह से रिश्तों पर भरोसा करना मुश्किल था।
और वो पेट दर्द, उसका कनेक्शन उनके मेंटल स्टेट से कितना गहरा लगता है।
बहुत गहरा। किताब यही बताती है कि वो शायद सिर्फ फिजिकल नहीं था, वो उनकी अंदरूनी पीड़ा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का मैनिफेस्टेशन था।
और इसी वजह से हेरोइन उनके लिए सिर्फ नशा नहीं बल्कि सेल्फ मेडिकेशन थी, दर्द कम करने का तरीका।
हाँ, वो उसे दवाई ही मानते थे, फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह के दर्द के लिए।
और विडंबना देखिए, जिस स्टेबल फैमिली के लिए वो तरसते थे, अपनी बेटी के लिए बनाना चाहते थे,
उसी दर्द और नशे ने आखिर में वो सपना भी छीन लिया। बाहर से इतने सफल पर अंदर से हमेशा अकेले, बाहरी। अगर उनके जीवन के तीन सबसे बड़े मोड़ों की बात करें जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, तो पहला तो शायद वही तलाक वाला वाक्या होगा।
हाँ, निश्चित रूप से पहला और सबसे गहरा मोड़ वही था, 9 साल की उम्र में पेरेंट्स का तलाक, वो मूल घाव जिसने असुरक्षा, परित्याग का डर, रिश्तों में दिक्कतें, इन सब की नींव रखी। इसने उनके पूरे वजूद को, उनकी कला को शेप दिया।
और दूसरा बड़ा मोड़ जिसने फिर से दुनिया हिलाई पर अलग तरह से,
वो था 1991 में नेवरमाइंड और खासकर स्मेल्स लाइक टीन स्पिरिट का धमाका और रातों रात मिली ग्लोबल सक्सेस।
हाँ, जिसने उन्हें वो बना दिया जो वो शायद बनना नहीं चाहते थे, पीढ़ी का प्रवक्ता।
बिल्कुल, ये उनके पंक आदर्शों के एकदम उलट था। सफलता जश्न नहीं, बोझ बन गई, स्वर्ग से भी भारी। उनकी एंग्जाइटी, अकेलापन, वो प्रामाणिकता का संकट, सब बढ़ गया।
पहला मोड़ निजी था, दूसरा एकदम सार्वजनिक, और तीसरा जिसने उन्हें शायद अंत की तरफ धकेला,
वो था उनका वो पुराना लाइलाज पेट दर्द का बढ़ते जाना और उससे निपटने के लिए हीरोइन का सहारा लेना।
हाँ, वो दर्द जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था।
और जब वो असहनीय शारीरिक पीड़ा, उनकी गहरी इमोशनल पीड़ा और फेम के प्रेशर के साथ मिली, तो उन्हें हीरोइन ही एकमात्र दवा नजर आई।
और वहीं से वो नशे का दुष्चक्र शुरू हुआ,
जिसने धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर दिया। सेहत, रिश्ते, क्रिएटिविटी, जीने की इच्छा, जिसे वो इलाज समझ रहे थे, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया। वाकई एक त्रासदी।
कर्ट की कहानी में हम सब के लिए भी बहुत कुछ है सीखने को, है ना? जैसे बचपन के ट्रॉमा का असर।
हाँ, पहला सबक तो यही है कि शुरुआती जख्म अगर भरे नहीं तो जिंदगी भर पीछा करते हैं। व्यवहार, रिश्ते, मेंटल हेल्थ, सब पर असर डालते हैं।
दूसरा, मेंटल हेल्थ और उससे जुड़ा स्टिग्मा। 90 के दशक में तो और भी मुश्किल था इस पर बात करना, मदद मांगना कमजोरी माना जाता था।
कर्ट शायद डिप्रेशन या बाइपोलर जैसी कंडीशन से जूझ रहे थे, पर उन्हें सही सपोर्ट नहीं मिला। उनकी कहानी बताती है कि मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना कितना खतरनाक हो सकता है।
और नशे की लत को समझने का नजरिया भी, ये हमेशा कोई नैतिक गिरावट नहीं होती।
सही कहा।
क्रॉस की किताब दिखाती है कि ये अक्सर गहरे दर्द से डील करने का एक डेस्परेट तरीका, सेल्फ मेडिकेशन हो सकता है। हमें एडिक्शन से जूझ रहे लोगों के प्रति थोड़ी हमदर्दी रखनी चाहिए।
फिर वो फेम का प्रेशर, सेलिब्रिटी कल्चर का डार्क साइड, लगातार पब्लिक की नजरों में रहना, उम्मीदों का बोझ, ये इंसान को तोड़ सकता है।
बिल्कुल, हमें याद रखना चाहिए कि सेलिब्रिटीज भी इंसान होते हैं।
और अपनी ईमानदारी, अपनी ऑथेंटिसिटी बनाए रखने की चुनौती, एक कमर्शियल दुनिया में कर्ट इसी से जूझते रहे।
हाँ, क्या आप बिना बिके सफल हो सकते हैं? ये सवाल आज भी कई कलाकारों के मन में होगा।
और वो अकेलापन बनाम अपनेपन की जरूरत, इंसान को जरूरत होती है कि कोई उसे समझे, अपनाए। कर्ट की कहानी दिखाती है कि बाहरी सफलता के बावजूद अंदर का अकेलापन कितना तकलीफदेह हो सकता है।
और आखिर में शरीर और मन का कनेक्शन, फिजिकल दर्द और मेंटल हेल्थ कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, कर्ट का पेट दर्द इसका एक दुखद उदाहरण है। तो इस पूरी बातचीत से अगर तीन मुख्य बातें निकालनी हो, तीन टेकअवेज।
पहली एक इमोशनल इनसाइट ये होगी कि बचपन के अनसुलझे घाव, खासकर वो अकेले छूट जाने का डर, इंसान पर ताउम्र कितना गहरा और विनाशकारी असर डाल सकता है। और दुनिया भर की शोहरत भी उस अंदरूनी अकेलेपन को भर नहीं पाती।
दूसरा एक इंटेलेक्चुअल इनसाइट, वो ये कि कमाल की आर्टिस्टिक टैलेंट और गहरी साइकोलॉजिकल पीड़ा, जिसमें मेंटल इलनेस और क्रॉनिक फिजिकल पेन शामिल हो सकता है, इनके बीच अक्सर एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिश्ता होता है। कई बार कला उस दर्द का आईना बन जाती है।
और तीसरा एक यूनिवर्सल इनसाइट, शायद सबसे जरूरी, कि हमें मेंटल और फिजिकल हेल्थ को एक साथ देखना होगा, होलिस्टिकली, और मदद मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। साथ ही जिंदगी के दबावों के बीच असली इंसानी कनेक्शन, आपसी समझ और सहानुभूति की जरूरत कितनी फंडामेंटल है।
बिल्कुल सही, बहुत गहरे सबक हैं कर्ट कोबेन की कहानी में।
हाँ, यकीनन।
यथार्थ पाठ, फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।